एक बार शशनी अकेले गांव के बाहर सैर करने गई और चांदनी में खेतों के बीच थोड़ी देर आराम करती रही। खेतों में हल चलाए जा चुके थे। कुछ खेतों को पानी देकर पहले पहल उनमें धान रोपा गया था। खेतों में पानी पहुंचते ही असंख्य मेढ़क, कछुए आदि न जाने कहां से आ धमके। शशनी जब घर से निकल रही थी तब परिचारिकाओं ने उसके साथ चलना चाहा, पर उसने उन्हें रोक दिया। जब वह घर लौट रही थी तब बाजारों में ग्राम पंचायतों की बत्तियां टिमटिमाती दिख पड़ी। बिजली की अनुपस्थिति उसे बहुत खलने लगी। खेतों में चलना फिरना अंधेरे में भी संभव था, परंतु गांव में आने के बाद वहां के आधे अंधेरे में चलना कठिन हो गया। दूसरे दिन रंगाराव जी मद्रास से आए। उसी शाम को सुवर्णापेट में नगरपालिका स्थापित करने का प्रयत्न शुरू हुआ। सारे गाँव को मोहल्लों में विभाजित किया गया। एक एक भाग में एक एक उम्मीदवार खड़ा हुआ। चंद्रा रेड्डी को सरकार की ओर से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। रामेश्वरम, तीन पादरी और हरजन बस्ती की ओर से प्राइमरी कक्षा तक पढ़ते हुए चार हरजन, ये सब नगरपालिका में सरकार की ओर से मनोनीत हुए। फिर चुनाव प्रारंभ हुए। सुवर्णापेट की जनता में चुनाव के प्रति एक बारगी उत्साह जाग उठा। ब्रिटिश सरकार के रहते हुए भी आज तक वे केवल जमींदार से परिचित थे, उन्हीं को राजा मानते थे। अब इस नगर पालिका के कारण उन्हें ऐसा लगा कि उनका और सरकार का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो रहा है। जमींदार एक बड़े पदाधिकारी की भांति दिखने लगा। अब वे केवल व्यक्ति नहीं थे, उन्हें संस्था का स्वरूप प्राप्त हो चला था। इन चुनावों के कारण जमींदार की कोठी का पुराना गौरव जाता रहा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि किसी को उसके पूर्व गौरव का स्मरण ही न रहा। जमींदार भी एक बड़े किसान की भांति सबको दिखने लगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और समान अधिकार वाला बन गया। लोग बड़े खुश हुए, सोचने लगे अब हम ही शासक हैं, हम ही अपने बुरे भले के मालिक हैं। सरकार भी अब हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकती। हमारे प्रतिनिधि नगर पालिका में हमारी ओर से खूब चर्चा करेंगे और हम जो चाहेंगे वही होगा। हमारी हथेली पर स्वर्ग आ बसेगा। नए सदस्यों को अप्रत्याशित ढंग से ही नए नए पद मिल गए। उनके पास पढ़ाई नहीं थी, धन दौलत नहीं थी, अतएव इन पदों की आकस्मिक प्राप्ति से वे फूले नहीं समाए। एक दिन सवेरे गणाचार्य स्नान करके चार नीम की टहनियाँ लेकर कुछ ध्यानमग्न सी निकल पड़ी। बाजारों में बच्चे उनका पीछा करने लगे। वह गांव के चारों ओर घूम आई। कोठी के सामने थोड़ी देर खड़ी होकर एक नीम की टहनी को वहाँ रख दिया। गाँव के बाहर जमींदार का एक बंगला नगर पालिका के दफ्तर के काम में लाया जाता था। उस बंगले के सामने ही गणाचारी ने एक टहनी छोड़ी। जमींदार साहब ने नगर पालिका को अपनी 40 एकड़ जमीन दे दी थी। उस जमीन में नगर पालिका भवन का निर्माण होने वाला था। वहां जाकर गणाचारी ने एक और टहनी छोड़ी। चौथी टहनी उसने चंद्रा रेड्डी के घर के सामने छोड़ी। गणाचारी को पगली कहना पिछले 10 साल से चलता आया था। कालक्रम के साथ उसके पागलपन की बात पर कई लोग विश्वास करने लगे। आज उसका घूमना फिरना और नीम की टहनियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ना देखकर लोग सदा की भांति उसे पगली कहने लगे। कई लोगों ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। एक दिन नगर पालिका की सभा चल रही थी। 15 सदस्य उपस्थित थे। एक सरकारी सदस्य ने सुझाया कि नगर पालिका का भवन बनाने के लिए 2 लाख रुपये चाहिए, सो यह रुपया गाँव वालों से कर के रूप में वसूल किया जाए। गांव से चुनकर आए हुए सदस्य इस सुझाव के विरोध में खड़े हुए। उनका कहना था कि सुवर्णापेट जैसे गांव से 2 लाख रुपए वसूल होना असंभव है, तथा इस रकम का कुछ भाग जमींदार साहब और कुछ सरकार दे तो समस्या हल हो सकती है। सभा में खूब चर्चा चली, पर सदस्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए सुझाव पर वोट लिए गए। सरकारी पक्ष की जीत हुई। इसके उपरांत यह प्रश्न उठा कि धन कैसे वसूल किया जाए। सुझाव गया कि प्रत्येक घर से अधिक कर वसूल किया जाए। जिन्हें प्रतिमास वेतन मिलता है उनसे प्रति रुपया 1 आना लिया जाए। इस प्रकार वर्ष भर में 8,000 रुपये जमा होने चाहिए। 30 वर्ष में यह सब रकम ब्याज समेत जमा होगी, इसलिए रकम सरकार से कर्ज लेकर तुरंत भवन का निर्माण और अन्य कार्यक्रम शुरू कर देने चाहिए। उस दिन प्रस्ताव आदि पास होने तक दोपहर बीत गई। कड़ी धूप थी, जिधर आंख उठाकर देखो मृगतृष्णा सी प्रतीत होती थी। डोरिया कपड़े पर खींची सफेद लकीरों का सा आभास होता था। सदस्य सभास्थल से उठकर बाहर आए। उसी समय हरिया दूर से गुजरा। वर्षा भाव के कारण उसका शरीर भोंडा हो चला था। केवल खाद के बल पर बढ़ने वाले ज्वार के खेत के 2-4 पत्ते उसने हाथ में ले रखे थे। नगर पालिका के सारे सदस्यों को एकत्र देखकर शायद हरिया घबरा गया। मनुष्य को देखते ही चौंक कर भय के मारे पलायन करने वाले सांप की भांति गिरता उठता, गोल गोल फिरता, टेढ़ा मेढ़ा चलता, सिर उठाकर बार बार पीछे की ओर देखता हुआ वह वहां से भाग निकला। नगरपालिका के सदस्य उसके विकृत आकार की ओर देखते रह गए। उनमें से एक गोरे साहब ने सोचा कि इस हरिया को लंदन ले जाकर वहां की वस्तु प्रदर्शनी में रखा जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सृष्टि की समस्त विचित्र वस्तुओं का भंडार वहीं तो है। उन साहब का नाम गार्डिनर था। वे हरिया को दो चार बार देख चुके थे परंतु उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी उन्हें नहीं मिली थी। यदि हरिया यूं ही आवारा फिरने वाला होता तो उसे पकड़ने में कोई कठिनाई न थी, परंतु यदि उसके माता पिता हों और उन्हें कुछ देना ही पड़े तो उसकी 100 गुनी रकम देकर लंदन की वस्तु प्रदर्शनी वाले खरीद लेंगे। इस प्रकार पुण्य और पुरुषार्थ दोनों संपन्न होंगे। गांव में बात फैल गई कि 30 वर्ष तक कर का बोझ लोगों पर पड़ने वाला है। किसानों को यह कर अखरने लगा। वे सोचने लगे जानबूझकर इस झमेले में पड़ गए। बड़े शौक से नगरपालिका ले आए, परंतु आरंभ में ही 30 वर्ष तक खेतों खलिहानों को तिलांजलि देने की नौबत आ गई। गांव में अधिक से अधिक वेतन 30 रुपया है, परंतु आज से 30 के बदले 28 मिला करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और टैक्स भी लग रहे हैं, अतः 30 रुपये वेतन पाने वाला 25 से अधिक घर नहीं ला सकेगा। 10-12 रुपये वेतन पाने वाले का कष्ट तो इस कर से इतना बढ़ गया मानो अकाल में अतिरिक्त मांस आया हो। पिछले दिनों बड़े जमींदार के पास 10 रुपये वेतन पाने वाले किसी व्यक्ति को दारिद्र का कभी अनुभव नहीं होता था। गांव के सारे लोग जमींदार का थोड़ा बहुत माल अपने उपयोग में लाते थे, फिर भी जमींदार की दौलत घटती नहीं थी। आज जमींदार के खजाने में एक दमड़ी भी किसी को नहीं मिल रही थी, फिर भी जमींदार के पास पैसा नहीं बचा और दिनों दिन खजाना खाली होने लगा। हाँ, एक परिवर्तन अवश्य हुआ। पहले गांव की एक एक चींटी जमींदार का आश्रय लेती थी, आज गांव की हर चींटी स्वतंत्र है। व्यक्ति विकास और राष्ट्र विकास का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। सुबन्नापेट के दक्षिण में गुंडेरू नाम का एक नाला बहता था। उसकी चौड़ाई 2 गज से अधिक न थी, कोई निश्चित कगार नहीं थे, गहराई भी कभी 1.5 हाथ से अधिक नहीं होती थी। उसका उद्गम निजाम राज्य में किसी अज्ञात स्थान पर बतलाया जाता था। थोड़े से स्थलों को छोड़कर सारा पाट कीचड़ से भरा रहता था। यही कारण था कि पानी की गहराई अधिक न होने पर भी लोग उसे पार करने से घबराते थे। 5 या 10 वर्ष में एक बार बिना किसी सूचना के जब कभी उसके मन में आए नाले में सैलाब आ जाता, तब उसे पार करना असंभव हो जाता। भूतपूर्व जमींदार ने उस पर एक पुल बनवाया। वह नाला सुबन्नापेट से लगभग 1 मील पर था। सैलाब के समय उसका पानी सुबन्नापेट को चारों ओर से घेर लेता। किसी भी खेत में उस बरस कोई उपज नहीं होती थी। भूतकाल में जबकि सारे खेतों में केवल खरीफ की फसल हुआ करती थी, इन सैलाबों से बड़ी हद तक किसानों को लाभ ही होता था। जब सैलाब आता तो केवल उस फसल में किसानों को नुकसान होता, परंतु सैलाब में बहकर आई हुई जो नरम उपजाऊ मिट्टी खेतों में आ जमती वह इतनी उपजाऊ होती कि अगले 10 वर्ष तक उन खेतों में सोना उपजता। मिर्च, जवार, मकई, रागी, तंबाकू, नील इत्यादि फसलों के रूप में जमीन धन उगलती। गुंडेरू नदी वहाँ के किसानों के लिए प्राणदात्री थी, अन्नदात्री थी। उस माता की भांति जो कभी कभी क्रोध में बच्चे को पीटती है पर तुरंत उसे हृदय से लगाकर स्तन्य देती और समझा बुझाकर प्रसन्न करती है। परंतु इधर 10 वर्ष के से सुबन्नापेट के चारों ओर धान की खेती शुरू हो गई थी। ज्वार के बदले धान के खेत ही दिनों दिन फैलते जाते थे। सैलाब आए 10 वर्ष हो चुके थे। धान उगाने की किसानों को आदत सी पड़ गई थी और नदी का सैलाब उन्हें भूल सा गया था। सुवन्नापेट में कड़ी धूप से लोगों के नाकों दम था, परंतु एक दिन सवेरे देखते देखते नदी में सैलाब आ गया। न जाने नदी के उद्गम प्रांत में कितनी वर्षा हुई थी। लोग आशा कर रहे थे कि सैलाब आज थम जाएगा, कल थम जाएगा, परंतु आज और कल के बीच वह दूना तिगुना बढ़ता गया और सारे खेतों पर आक्रमण करने लगा। पहले उसने तटवर्ती फसलों को खाया। खेतों का कुछ भाग तो पूरा पूरा डूब गया, कुछ आधा और कहीं कहीं केवल जड़ों तक। यह थी पहले दिन की स्थिति। दूसरे दिन दक्षिण की ओर के सारे खेत पानी में अदृश्य हो गए। बगलों के झुंड पानी के ऊपरी भाग में पंक्तियां बनाकर उड़ाने भरने लगे। चारों तरफ फैले पानी के बीच जहां कहीं ऊपर उठा हुआ टीला सा नजर आया वहीं खड़े होकर उन बगलों ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रह रहकर मछलियां पानी से अपना सिर ऊपर उठाती और तैरने की चेष्टा में तड़पतीं। सुबन्नापेट की छोटी मोटी झोपड़ियां सैलाब के पानी में डूबने लगीं। गरीब लोग अपनी झोपड़ियों के आगे मिट्टी के बांध बना बना कर रात भर जागते हुए उनकी रक्षा करते रहे। गांव के पश्चिम की ओर बहने वाली नहर में सैलाब का पानी घुस आया और पश्चिम तथा उत्तर दिशा में सारा प्रदेश जलमय हो गया। जमींदार का बनाया हुआ पुल टूट गया। विजयवाड़ा और सुबन्नापेट के बीच यातायात के साधन बंद हो गए। इस घटना के 20 दिन पहले रंगाराव जी और शशिनी सुवर्णापेच आए थे। सैलाब के कारण उनका मद्रास लौट जाना असंभव हो गया। उनकी मोटर गाड़ी चल नहीं सकती थी। रंगाराव के मन में एक अस्पष्ट सी इच्छा थी कि शशिनी पुरानी रानियों की भांति कम से कम गांव की प्रथाओं के अनुसार साड़ी पहने और पर्दे का पालन करे, परंतु हृदय की गहराइयों में दबी हुई इस इच्छा को उनके नव संस्कारी मन ने कभी नहीं पहचाना। फिर उसके बारे में कहने सुनने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता। शशिनी को पति के इस मनोभावों की कल्पना तक नहीं थी। उसका जन्म एक स्वतंत्र देश में हुआ था। यदि उस देश में आने वाले किसी परदेशी ने वहाँ की मान मर्यादाओं और परिपाटियों का उल्लंघन किया होता तो उसके मन में अवश्य ठेस लगती, परंतु उसी नियम के अनुसार उसका अपना व्यवहार इस देश के लोगों को कितना अखरता होगा, इस विषय में उसने कभी सोचा तक नहीं। इस प्रकार सोचने की उसे आवश्यकता भी नहीं थी। इस देश के लोग हर कठिनाई को दैविक मानकर सह लेते, अपनी अनिच्छा प्रकट नहीं करते। इसके विपरीत जहाँ शशिनी पैदा हुई थी उस देश में अपनी इच्छा अनिच्छा को स्पष्ट रूप से प्रकट करना वहाँ के लोगों का प्रधान धर्म था। विरोध न करना वहाँ एक प्रकार से स्वीकार ही माना जाता था। दूसरे दिन शशिनी प्रातःकाल गांव के दक्षिण की ओर चल पड़ी और जहाँ तक संभव हो सका सैलाब के पानी में उतरती गई। उसने एक हरिजन की झोपड़ी के पीछे छिपकर बंदूक से एक बगुले पर गोली चलाई। दो हरिजन बालक दौड़कर उस मरे हुए बगुले को ले आए। बंदूक का धमाका सुनते ही जहां तहां बैठे हुए सब जलपक्षी सहसा चकित नेत्रों से इधर उधर देखते हुए गर्दनें लंबी करके अपने पंखों को इधर उधर हिलाकर आगे की ओर डोलते हुए उड़कर किसी और स्थान पर जा बैठने के प्रयास में सर्वत्र पानी ही पानी पाकर थोड़ी देर इधर उधर भ्रमण करके अंत में निस्सहाय होकर फिर पुराने स्थानों पर ही जा बैठे। उन बगुलों ने अपनी संख्या का जायजा नहीं लिया, इसीलिए मरा हुआ बगुला उनके हिसाब में नहीं आया। पानी में कहीं कहीं कांस के सफेद फूल दिख पड़ते थे। कुछ चमार स्त्रियां उन फूलों को तोड़कर सफेद पंखुड़ियों को अलग करके उनकी मालाएं गूंथकर अपनी चोटियों में लगा रही थीं। उन मालाओं को और उन स्त्रियों की अलंकार प्रियता को देखकर शशिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। न जाने इन अनपढ़ और असभ्य लोगों में इतनी रसज्ञता कहाँ से आ गई। इनके मन स्वभावतः बड़े कोमल होंगे। इनके शरीर की कालिमा प्रायः इनकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी है। शशिनी पश्चिम की ओर चल पड़ी। वहाँ कुछ खेत पानी में नहीं डूबे थे। जहाँ जहाँ खाद के ढेर पड़े थे वहाँ की फसल अधिक ऊंचाई तक बढ़ी थी और मानो एक प्रकार के गर्व से सैलाब के पानी का उपहास कर रही थी। उन खेतों की कलचाई नहीं हुई थी। पाद टिप्पणी में कलचाई मतलब खेतों की निराई। कुछ विशेष प्रकार के फूल पानी के ऊपर तैर रहे थे। वे नीले रंग के थे। उन्हें देखकर शशिनी नहीं समझ पाई कि वे फूल हैं या फल। उसने एक चमार लड़की से पूछा, यह क्या है? इधर 2 महीने से शशिनी गांव में रह रही थी। उसने तेलुगु के 10-12 शब्द सीख लिए थे। उसके प्रश्न पर उस लड़की ने उत्तर दिया कि वह एक प्रकार का फूल है और उसके पौधे की जड़ें उबालकर खाने में स्वादिष्ट होती हैं। यह कहती हुई वह लड़की पानी में उतरती गई और कुछ जड़ें उखाड़ कर रानी को देने के लिए ले आई। शशिनी का आना चमार बस्तियों और खासकर पादरियों की बस्तियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात सिद्ध हुई। ये सभी लोग गांव की अपेक्षा कोठी के अत्यंत स्नेह पात्र बन गए। शशिनी उनके लिए प्राण प्रिय हो गई। एक चमार बालक उसके मारे हुए बगुले को कोठी में ले जाना चाहता था, परंतु शशिनी ने उसे रोका और स्वयं अपने रुमाल में उस लड़की की लाई हुई जड़ें बांधकर कांख में बंदूक दबाए बाएं हाथ में मरा हुआ बगुला लिए मिट्टी लगे कपड़ों के साथ कोठी में जा पहुंची। अफ्रीका के किसी देश में या यूरोप के लोगों की बंदूक की प्रध्वनि से अपरिचित प्रशांत आकाश वाले दक्षिण अमेरिका के किसी घने जंगल में बसने वाली जातियों के विषय में अनुसंधान करने को साहसी लोग सभ्य देशों में जाया करते हैं। उनमें अपने आप को सम्मिलित करके शशिनी कल्पना पथ में एक विशेष उद्वेग का अनुभव कर रही थी। लोग भौचक्के होकर उसकी ओर ताक रहे थे। स्वतंत्र विचारों और संस्कृतियों से अपरिचित कई लोगों के मन में उसके प्रति एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हुई। जो कल्पनाक्षम नहीं थे, भोले भाले थे, उन्हें शशिनी का वह रूप बड़ा ही रमणीय, आकर्षक और स्वतंत्रता का प्रतीक दिख पड़ा। स्नान के उपरांत उसने कपड़े बदले और जमींदार से जा मिली। जमींदार ने उसका उचित आदर किया और कुछ इधर उधर की बातों के उपरांत कहा, देखो इस गांव में तुम्हारा इस प्रकार घूमना फिरना कुछ ठीक नहीं लगता। मद्रास में हम यथेष्ट घूम फिर सकते हैं। किसी और जगह भी हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, परंतु इस गांव में यह बात ठीक नहीं। शशिनी ने कुछ देर तक बहस की, परंतु वचन दिया कि पति के मत के विरुद्ध कुछ नहीं करेगी। दोनों भोजन पर बैठे दासियों ने बगुला नहीं पकाया था। शशि ने पूछा, बगुले का मांस कहाँ है? नौकर ने कहा, वह खेत का बगुला है, उसे नीच जाति वाले ही खाते हैं, राजा लोग नहीं खाते। कोई और समय होता तो यह सुनकर शशनी संभवतः हंस पड़ती, परंतु अभी अभी रंगाराव जी से जो बात हुई थी उसका स्मरण करके चुप रही। फिर उसने अपनी लाई हुई जड़ियों के बारे में पूछा। इस बार कोई जवाब नहीं मिला। नौकर कुछ झिझक कर चुप हो गए। 4 दिन बाद सैलाब थम गया, फिर भी नाला जोरों से बह रहा था। 1 सप्ताह के बाद उसका प्रवाह सहज हुआ। रंगाराव को इतने दिन सुबन्ना पेट में विवश होकर रहना कुछ पसंद न था। प्रतिदिन शशनी कोठी की छत पर जा बैठती और चारों ओर जलावृत भूमि की शोभा देखती रहती। प्रवाह के कम होने पर सारे रास्ते कीचड़ से भर गए। सड़कों पर 1-1 फुट मिट्टी जम गई और उसे खोद निकालना आवश्यक हो गया। सड़क जमींदार की थी, उसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। धर्माराव हरप्पा को पढ़ाने प्रतिदिन कोठी में जा रहा था। एक बार भी रंगाराव जी से उसकी भेंट नहीं हुई थी। सितंबर की पहली तारीख को इटसन साहब कोठी पर आए और रंगाराव जी से 2 महीने की पढ़ाई के वेतन के 2,400 रुपये वसूल कर लिए। उन्होंने हरप्पा से ही बातें की और उससे हाथ मिलाकर चले गए। तुरंत हरप्पा को धर्माराव के वेतन की बात का स्मरण हो आया। उसने सोचा कि पिताजी से कहना चाहिए। उसके मन में विचार आया कि अभी इसी गर्मी में धर्माराव को भी 2,400 रुपये का वेतन दिलवाया जाए तो ठीक हो, परंतु पिता और पुत्र में निसंकोचता न थी। हरप्पा पिता से मिलना भी चाहता तो वहां शशनी छाया की भांति उपस्थित थी। शशनी के प्रति हरप्पा के मन में एक विचित्र भाव बना हुआ था। वह भाव घृणा का था या ईर्ष्या का, भय का या प्रेम का, या इनमें से कोई भी नहीं था, यह बात उसकी समझ में नहीं आती थी। जिस प्रकार गणाचारी को देखकर हरिया भाग खड़ा होता, उसी प्रकार शशनी को देखकर हरप्पा खिसक जाता। परंतु हरिया के प्रति गणाचारी के जो भाव थे, वे ही भाव हरप्पा के प्रति शशनी के थे या नहीं, यह कहना कठिन था। हरप्पा दुबला पतला था, छरीरे बदन का, 10 वर्ष का होते हुए भी देखने में केवल 8 वर्ष का लगता था। वह पिता की पिलाई हुई कॉफी और विदेशों से आए हुए डब्बों के दूध पर पला था। बड़े जमींदार की मृत्यु के बाद से वह सदा मोटर गाड़ी पर ही घूमता फिरता रहा। उस वंश में सभी युवराज 6 साल की आयु में घोड़े की सवारी सीख जाते थे। एक नाटा सा घोड़ा था जिस पर रंगाराव जी भी 6 साल की अवस्था में सवारी कर चुके थे, परंतु हरप्पा को घोड़े की सवारी से पूर्णतया अपरिचित रखा गया। बालक स्वभाव से उद्विग्न मन का था। उसके सारे मनोभाव अपने दादा के से थे। दादाजी की रसज्ञता, उदारता और विवेक पोते में विद्यमान था। हाँ, उनके शरीर जैसे दृढ़ता नहीं थी। संभवतः निर्बलता की एक हवा सी हमारे देश पर चलने लगी थी। जो लोग ऊंचे पूरे कद के हट्टे कट्टे आजानुबाहु विशाल वक्ष वाले और हाथी के सूंड को मरोड़ कर तोड़ने वाले बलवान थे, उनकी संतान नाठी, दुबली पतली और सवेरे उठते ही कुछ खाने के लिए तिल मिलाने वाली निकली। हरप्पा का मन जितना विशाल था, उसके अनुरूप शरीर में दृढ़ता न थी। अतः मन और शरीर के बीच एक प्रकार की विसंगति उत्पन्न हो गई। मन था समुद्र की भांति विस्तृत, परंतु शरीर एक छोटी नहर के समान तटों से बंधा हुआ। समुद्र का वह असीम पानी इस छोटी सी नहर में कैसे बह सकता था? तटों का टूटना अनिवार्य था। इसी कारण कभी कभी हरप्पा का शरीर आपाद मस्तक कांप जाता। देखने वाले कहते कि बालक दुर्बल है, पर सचमुच वह दुर्बलता मन की महान सबलता का परिणाम थी। यह रहस्य कोई नहीं जानता था। दूसरे दिन रंगाराव जी बंगले पर अकेले इधर उधर टहल रहे थे। शशिनी राजभवन के अग्रभाग से नए पुल की तरफ देख रही थी। वहां झुंड के झुंड लोग खड़े थे। वे उसे चींटियों की कतार जैसे दिखाई दिए। मिट्टी से ढके हुए खेतों में खड़े घास फूस के बीच सड़क ऐसी लगती थी मानो केशों के बीच निकलती हुई सुंदर मांग। शशिनी उस दृश्य को देख रही थी। इधर रंगाराव जी को एकांत मिला। दोपहर का समय था। हरप्पा को नौकर के द्वारा पता चला कि पिताजी अकेले हैं। उसने उन्हें खबर भेजी और दर्शन के लिए जा पहुंचा। रंगाराव जी ने बेटे को सोफे पर बैठाते हुए पूछा, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं? हरप्पा ने जवाब दिया, जी हाँ। पिताजी ने पूछा, किस काम से आए हैं? हरप्पा कुछ नहीं बोला। जो कुछ कहना चाहता था वह मन का मन में रह गया। कुछ देर बाद पिता ने पूछा, धर्माराव आ रहे हैं? धर्माराव का नाम सुनते ही हरप्पा के मन में थोड़ी सी हलचल शुरू हुई। उसने कहा, जी हाँ, और फिर धीरे धीरे कहा, उनका वे पर वह रुक गया। थोड़ी देर बाद रंगाराव जी से जी ने पूछा, उन्हें कितना वेतन चाहिए? यह प्रश्न हरप्पा की समझ में नहीं आया। फिर रंगाराव जी ने पूछा, क्या महीना 15 रुपये काफ़ी होंगे? यह प्रश्न सुनकर सोफे पर बैठा हुआ हरप्पा अपने शरीर के उर्ध भाग को तान कर मुख उठाकर लज्जा, क्रोध और विस्मय प्रकट करने लगा। पिता की बात का उत्तर शायद उसकी समझ में नहीं आया। पिता उसकी ओर देख नहीं रहे थे। लगभग एक मिनट के बाद हड़प्पा की स्थिति का स्पष्ट आभास हुआ। पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, 2 महीने के 30 रुपये देने के लिए खजांची को खबर भेज देना। यह कह वे छत पर चले गए। हड़प्पा बैठा बैठा मानो धंस सा गया। आंखों में आए हुए आंसुओं को उसने ज्यों त्यों कनपटी के पास ही दबा लिया। उसे लगा कि उसकी छाती फट जाएगी। इसी से छाती पर हाथ दबाए, सिर लटकाए बड़ी देर तक बैठा रहा। उसके मन में भावों के बदले शून्यता घर कर रही थी। उसका बाल मन इस तीव्र आघात को सहन नहीं कर पाया था। घड़ी भर में वह निद्रा के वश में हो गया। उसे किसी ने नहीं जगाया। संध्या समय वह खुद ही उठा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में जा बैठा। धर्माराव और हड़प्पा में घनिष्ठ स्नेह हो गया था। पढ़ाई के अतिरिक्त धर्माराव 2-4 बार यूं ही हड़प्पा के पास आ चुका था। आज सायंकाल फिर आया। उस समय हड़प्पा का मन अत्यंत शुद्ध था। धान के उन खेतों की तरह जो बाढ़ के कारण नष्ट भ्रष्ट होकर उजड़ से गए थे। धर्माराव के आते ही हड़प्पा उठ खड़ा हुआ। जब कभी हड़प्पा आता तो इसी प्रकार धर्माराव भी उठ खड़ा होता था। आखिर 10 वर्ष का बालक जो ठहरा, जिसकी माँ मर चुकी थी। पिता उसका विशेष आदर नहीं करते थे। बालक के प्रति धर्माराव का यह गौरवपूर्ण व्यवहार एक प्रकार से अनावश्यक था, परंतु धर्माराव की दृष्टि में हड़प्पा 10 वर्ष का बालक मात्र नहीं था, बल्कि वीरन्ना नायडू, हरिहर नायडू, गोपाल स्वामी नायडू, हड़प्पा नायडू, कृष्णम नायडू आदि राजाओं के रक्त बिंदुओं का अंश और उनके तेज का अवशेष था। यूँ तो यह बालक फूंक मारने भर से गिर पड़ता था, परंतु धर्माराव की दृष्टि से यह उन महान योद्धाओं का उत्तराधिकारी था जिन्होंने असंख्य शत्रुओं के मणिमंडित मुकुटधारी मस्तकों को अपनी तलवारों के घाट उतारा था। इस एकाकी बालक के मुख पर यूँ तो दैन्य झलकता था, परंतु धर्माराव को उस मुख में प्राचीन आंध्र प्रशासकों की अत्यंत वर्चस्वी छटा देख पड़ती थी। जब धर्माराव हड़प्पा को देखता तो उसे उतना ही आनंद मिलता जितना सुमंत को श्री रामचंद्र को देखकर मिलता था। धर्माराव से मिलकर हड़प्पा भी आनंद विहोर हो उठता था, पर आनंद का विश्लेषण नहीं कर सकता था। उसकी बुद्धि इस प्रकार का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं थी। उस परिपक्व दशा के लिए कुछ और समय की आवश्यकता थी। कुछ देर बाद सकुचाते सकुचाते हड़प्पा ने पूछा, आपको कितना वेतन चाहिए? धर्माराव ने कहा, वेतन की कोई आवश्यकता नहीं। फिर उसने अपने और जमींदार के दोनों वंशों का प्राचीन संबंध हड़प्पा को बताया। हड़प्पा को यह सब वृतांत किसी स्वर्ग लोक की कथा सा लगने लगा। अंत में धर्माराव ने कहा, आप लोग वेणुगोपाल स्वामी के धर्मकर्ता हैं। आपका धर्म कर्तृत्व रहे तो मैं समझूंगा कि मुझे वेतन मिल गया। बीए की परीक्षा दे आया हूँ, 40-50 का वेतन कहीं भी पैदा कर लूंगा। हड़प्पा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, बस कुल इतना ही वेतन? दिन भर पढ़ाकर भी प्रतिमास केवल 40-50 रुपये मिलेंगे? मुझे तो मेरे विदेशी ट्यूटर प्रतिदिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते। बहुतेरा समय इधर उधर की वस्तुएं दिखाने में ही गंवा देते हैं, फिर भी क्या हम उन्हें प्रतिमाह 1200 रुपये नहीं दे रहे हैं? धर्माराव ने हंसकर कहा, आप अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब यह बात आपकी समझ में आएगी। इसके बाद धर्माराव के वेतन की चर्चा फिर कभी नहीं आई। हड़प्पा धर्माराव से बातें किया करता था, धर्माराव उसे जबरदस्ती पढ़ाता। दिनों दिन हड़प्पा अत्यंत कुशाग्र बुद्धि देखने लगा, परंतु 1 महीने के बाद इटसन साहब ने हड़प्पा को नीरा मंदमती समझा। धर्माराव ने उसे बड़ा मेधावी समझा। हड़प्पा की दृष्टि में इटसन साहब उसके नौकर थे, ट्यूटर थे, परंतु धर्माराव उसका मित्र था, अत्यंत उदार साथी। नए पुल का निर्माण हुआ। शशिनी और रंगाराव मद्रास चले गए। गुड़ीवाड़ा से धान के पौधे लाए गए और बाढ़ से नष्ट हुए खेतों को फिर से ठीक करके रोपा गया। यह नई फसल भी कुछ विवर्ण सी दिखती थी, उस मूर्ख धनवान की भांति जो अपने ब्याह के समय भी मुख की कांति खो देता है। यह फसल कब बढ़ेगी, कब फलेगी और कब लोग उस धान को तोलकर खुश होंगे? नगर पालिका की सभा हुई। जो सदस्य किसानों का प्रतिनिधि था उसने अनुरोध किया कि अब की सारी फसल का सत्यानाश हो गया है, धान के बदले मिट्टी ही हाथ लगेगी, इसलिए इस वर्ष के टैक्स की वसूली आगामी वर्ष तक स्थगित होनी चाहिए। परंतु सरकारी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के स्थापित होने के बाद पहले ही वर्ष यदि टैक्स वसूल नहीं किया गया तो सरकार का विश्वास हम पर नहीं रहेगा, इसलिए जैसे तैसे टैक्स अदा करना ही होगा। अंत में प्रस्ताव पर वोट लिए गए। किसानों के पक्ष की जीत हुई। गांव वाले सही प्रसन्न हुए। अब चंद्रा रेड्डी की समझ में आया कि अध्यक्ष होने के नाते उसे निरंकुश अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। नगर पालिका के मिशनरी सदस्य ने कहा, मेरा वक्तव्य और विवाद जनता के विरुद्ध रहेगा, परंतु मैं वोट उनके पक्ष में ही दूंगा। उस सदस्य ने अध्यक्ष चंद्रा रेड्डी को भी ऐसा ही करने का उपदेश दिया। चंद्रा रेड्डी ने चीढ़ कर कहा, आप मुझे उपदेश देते हैं, मैं तो जनता के पक्ष में रहूंगा। इस पर मिशनरी ने बड़े मार्मिक ढंग से समझाया, देखिए आप सरकार के मनोनीत अध्यक्ष हैं, अतएव आपका मत सरकार के पक्ष में ही होना चाहिए, आपको सरकार का ही कहा मानना चाहिए। हरिया की आयु 16 वर्ष की हो चली थी। अब तक वह कभी अस्वस्थ नहीं हुआ था, परंतु जिस दिन बाढ़ आई उस दिन उसे जोर का बुखार आया। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने जांच करके मंगा से कहा, एक शीशी लेकर अस्पताल आओ। मंगा अस्पताल जाकर दवा ले आई और हरिया को दवा पिलाने लगी। हरिया दवा फेंक कर गुस्से में उछल कूद मचाने लगा। हरिया के जन्म के बाद मंगा के मन में सांप का कोई भय नहीं रहा था, परंतु जब से हरिया को बुखार आया मंगा सांपों से बहुत घबराने लगी। अंत में बिना किसी दवा के ही 10-11 दिन बाद हरिया का बुखार उतरा। अजीब बातें हुई कि जहां बुखार से लोग दुबले पड़ जाते हैं, वहां हरिया बुखार के बाद हट्टा कट्टा हो गया। पहले उसके शरीर की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं दिखती थी, ऐसा लगता था कि कोई घास फूस की काड़ी चल फिर रही है। अब ऐसा लगा कि कोई कच्चा बांस चल फिर रहा है। पता नहीं यह उसके शरीर की पुष्टि थी या निरी सूजन। वह खड़ा होकर ठीक ठाक चलने फिरने लगा। धर्माराव कोठी पहुंचा। वह और हरप्पा संध्या समय सैर करने निकले। उनका इस प्रकार घूमना फिरना बाकी राजबंधुओं और नौकरों को पसंद न था, तथापि शशनी के आगमन से वहाँ के रहन सहन में कई परिवर्तन हो चले थे, अतः इस घूमने फिरने की लोगों को आदत सी पड़ गई थी। किसी ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। हरप्पा कह रहा था, मैंने स्वामी को कभी नहीं देखा, वे कैसे हैं? हाँ हाँ, एक बार मैंने उन्हें देखा था, माँ के साथ एक बार मैं मंदिर गया था, स्वामी का रूप एकदम मेरे दादाजी जैसा है। धर्माराव, पहले प्रतिवर्ष स्वामी का कल्याणोत्सव हुआ करता था, आपके दादाजी के समय अंतिम 4 वर्ष यह उत्सव नहीं मनाया गया, 5वें वर्ष वे मनाने जा रहे थे, उत्सव बैसाख में होने को था, परंतु आपके दादाजी माघ मास में चल बसे। हरप्पा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर से हम कल्याणोत्सव मनाएंगे। यह सुनकर धर्मराव के मन में आया कि हरप्पा को चूम ले, परंतु उस बालक के शरीर में राजाओं का रक्त है, उसे छूना नहीं चाहिए। यह सोचकर धर्मराव ने हरप्पा को मन ही मन चूम लिया। धर्मराव बोला, मैं 4-5 दिन यहाँ नहीं रहूँगा, कृष्णा नदी पर पुष्कर लगने का समय है, विजयवाड़ा जाकर मुझे पुष्कर संबंधी विधियाँ पूरी करनी है, आज्ञा चाहता हूँ। पुष्कर कुंभ मेले को कहते हैं। हरप्पा, ये पुष्कर विधियां क्या होती हैं? धर्माराव कहने लगा, बृहस्पति 12 वर्ष में एक बार एक एक नदी के जल को आकर्षित करता है, उस संयोग से उस नदी जल में विशिष्ट शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो अन्य समय नहीं होती। सारे देवता पुष्कर के समय उस नदी जल में निहित होते हैं, इसी अवसर पर पितृदेवों को तर्पण आदि देने से अधिक फल मिलता है। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, अतः मुझे इस पुष्कर के अवसर पर तर्पण आदि विधियां पूरी करनी होंगी। हरप्पा, मेरी माता जी की ही मृत्यु हुई है, फिर क्या मुझे भी उन विधियों को पूरा करना होगा? तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। धर्माराव, आपके पिताजी इन संस्कारों में विश्वास नहीं रखते, आप विधियों को पूरा करने जाएंगे तो शायद उन्हें बुरा लगेगा, इसके अतिरिक्त वे ऐसा भी सोचेंगे कि मैंने अपने विचारों के अनुसार आपसे यह सब काम करा रहा हूँ। आज तक दोनों रानियों का मासिक श्राद्ध भी नहीं हुआ है, मृत्यु के बाद 15 दिन तक कोई श्राद्ध कर्म नहीं किए गए, शास्त्र की दृष्टि से आप प्रथम शौच से ही मुक्त नहीं हुए हैं, अतएव इस समय पुष्कर संबंधी विधियां आपको नहीं करनी चाहिए। हरप्पा, फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? धर्माराव, पहले आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। मनुष्य मर जाता है तो प्रेत की आकृति धारण करता है, हमारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती, उस रूप में उन्हें बड़ा दुख होता है और वे इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनके पुत्र श्राद्ध कर्म आदि करके उन्हें उस रूप से मुक्त करें। श्राद्ध कर्म न करने पर वे उसी प्रेत दशा में छटपटाते रहते हैं। हरप्पा, एक बार मेरे गोरे ट्यूटर ने मुझसे ही प्रश्न पूछा था, मैंने इसी प्रकार कुछ अस्पष्ट सा उत्तर दिया। इस पर वे कहने लगे कि यह सब पागलों की कल्पनाएं हैं, ब्राह्मणों ने पैसे ऐंठने के लिए ये सब ढकोसले शुरू किए हैं, हमें कैसे मालूम कि मरने वाले प्रेत बनकर रहते हैं? ठीक तो है, हम कैसे कह सकते हैं? धर्माराव, कुंवर जी, यह बात नहीं, यदि इसी प्रकार सोचेंगे तो हर धर्म में कई ऐसी बातें होती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, फिर तो किसी भी धर्म में श्रद्धा या विश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। एक धर्म में एक प्रकार का विश्वास होता है तो दूसरे में दूसरे प्रकार का। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि भविष्य में एक दिन यीशु प्रभु सभी मरने वालों की जीवात्माओं को फिर से बाहर निकालेंगे, इसी प्रकार की कई बातों पर उनका विश्वास है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो कहा है उस पर हमारा विश्वास है। दूसरे दिन धर्मा राव ने विजयवाड़ा जाकर पुष्कर संबंधी विधियां समाप्त की। तांगे के अड्डे पर जाने से पहले लोहे का कपाट पार करना पड़ा। वहां के एक डेरे में तीन आदमी खड़े थे, उनमें से एक ने धर्मा से कहा, ए इधर आओ। धर्मा राव अनसुनी करता हुआ जाने लगा, परंतु रास्ते में पुलिस के सिपाही ने उसे रोक कर डांटा, उधर जाते क्यों नहीं। धर्मा राव को नींद आ रही थी, तथापि वह डेरे के पास चला गया। वहां एक मेज थी और उस पर पुस्तक रखी थी। हैजे के टीके लगाने के साधन भी वहां रखे थे। जिस आदमी ने उसे बुलाया था वो बोला, टीके लगवा कर फिर चले जाना। धर्मा राव ने कहा, पुष्कर का समय तो कभी का समाप्त हो गया, अब क्यों टीके लगाते हो। इन टीकों से बुखार आए तो कौन परेशान होगा। हैजे की बात तो दूर रही, इन टीकों से अलग मुसीबत आएगी, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। वहीं बैठा हुआ एक दूसरा व्यक्ति बोला, टीका लगवाने ही होंगे। धर्मा राव ने उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, उसने सिर उठाया ही नहीं। इतने में पहला व्यक्ति धर्मा राव को देखकर कुछ नरम पड़ गया और नम्रतापूर्वक कहने लगा, बाबूजी कृपा करके टीका लगवा लीजिए। धर्मा राव ने कहा, यह कहाँ का न्याय है, पुष्कर का समय कभी का बीत गया, अब यहाँ आते जाते मुसाफिरों को इस तरह क्यों सताते हो। यह कैसा दुर्भाग्य है कि इस देश में कोई आराम से सफ़र भी नहीं कर सकता। इस पर वह व्यक्ति बोला, अच्छा महाशय आप जा सकते हैं। जाते समय पुलिस के सिपाही ने कड़ी आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो, किस गांव के रहने वाले हो। उसकी डांट सुनकर धर्मा राव कड़क कर बोला, जरा आपे में आकर बातें करो, समझे। सिपाही ने फौरन भीगी बिल्ली बनकर कहा, नहीं बाबूजी कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ से छुट्टी पाकर धर्मा राव घर पहुँचा, तब 3 बज चुके थे। दूसरे दिन धर्मा राव सुवर्णापेठ पहुँचा। घर की दशा यथापूर्व थी, गृहस्थी को चलाना कठिन हो गया। अब तक उसके मित्र सूर्यपति के दिए हुए रुपयों से गृहस्थी चल रही थी। सोचा था कि हरप्पा की पढ़ाई का कुछ वेतन मिलेगा, परंतु ठीक समय पर उदारता का भाव उमड़ आया और 10-15 रुपयों से भी हाथ धोना पड़ा। सुवर्णापेठ पहले की तरह गाँव नहीं रह गया था, उस पर शहर का रंग चढ़ते ही हर वस्तु महंगी हो गई। पहले जो गृहस्थी 15 रुपयों में चलती थी उसके लिए आज 25 भी अपर्याप्त थे। चावल का थैला 20 रुपये में बिक रहा था, एक एक दिन मुश्किल से बीत रहा था। पास में बचे 10 रुपये पुष्कर संबंधी विधियों में खर्च हो गए। रोज का खर्च इधर उधर के कर्ज पर चल रहा था। इसी असमंजस में वह दिन बीत गया। दूसरे दिन धर्मा राव हरप्पा के पास गया। हरप्पा अपने कमरे में बैठा था। नमक, तेल, गुड़, चावल आदि सामग्री एक बड़े थाल में वहाँ रखी थी। धर्मा राव के आते ही हरप्पा उठ खड़ा हुआ और बोला, कब पधारे। धर्मा राव ने कहा, कल लौटा हूँ। फिर उसने वहाँ रखी हुई सामग्री के बारे में पूछा। हरप्पा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों में कुछ बातें हो रही थी, इतने में 2 ब्राह्मण वहाँ आए। हरप्पा धर्मा राव से बोला, महाशय आज एकादशी है, मेरी माँ का देहांत एकादशी को हुआ था, इसलिए आज मासिक श्राद्ध के हेतु यह सामग्री मंगाई गई है, इसे इन ब्राह्मणों को देना चाहता हूँ, आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। धर्मा राव निर्विण्ण होकर वहाँ से चल दिया। हरप्पा के कमरे में ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और मासिक श्राद्ध कर्म करवाया, स्वयं पाक की सामग्री और दक्षिणा लेकर वे चले गए। कोठी में उन ब्राह्मणों का आना और हरप्पा के कमरे में जाना राधा कृष्णैया ने देख लिया था। उसने नौकर रंगन्ना से हालचाल पूछवाया और उस बालक की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हुआ। कर्म सिद्धांत के प्रति रंगा राव जी की अनास्था लोगों को पसंद न थी, परंतु किसकी मजाल थी कि जमींदार के विरुद्ध कुछ कहे। अंत में इधर उधर से खबर रंगा राव जी को मिली। उनकी धारणा हुई कि धर्मा राव की पढ़ाई का ही यह परिणाम है, परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं।